प्रतिबिंब नहीं हो सकता। भी प्रतिबिंब तो किसी स्वरूप वाले का होगा, जिहड़ी वस्तु का स्वरूप है वह प्रतिबिंब होएगा, और जो स्वरूप ही नहीं वह प्रतिबिंब कैसे होएगा। भी आ सूरज का कोई स्वरूप ही ना हो तो सूरज नूं ग्रहण करेगा दर्पण। आपां जिन्ने बैठे हाँ सामने रखिए शीशा तो सारयां दी फोटो दे विच आ जाएगी, तो जिहदा रूप ही नहीं है आकाश दा विच आए रूप कोई क्यों, वो कह रहा उहदा रूप नहीं है इस वास्ते उहदा प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अब वो कह रहा क्यों नहीं हो सकता, सुन लो, कोई शंका करे हैं आकाश का प्रतिबिंब नहीं होवे है किंतु केवल नक्षत्र आदि का ही प्रतिबिंब होवे है, काहे ते आकाश रूप करके रहित है और रूप वाले पदार्थ का प्रतिबिंब होवे है जाते आकाश का प्रतिबिंब बने नहीं। ऐसी शंका करे उनु उदा की समाधान है, ताका समाधान है दोहा, जो जल में अवकाश को नहीं प्रतिबिंब लिखाई थोरे में गंभीरता है प्रतीत के भाई। जो जल में आकाश को नहीं प्रतिबिंब लिखाई, जिहड़े आकाश दा जल दे विच प्रतिबिंब नहीं मनदे ना, जो जल में आकाश को जिहड़ा जल आकाश है उहदे विच तुसीं आकाश दा प्रतिबिंब नहीं मनदे ते थोड़े में गंभीरता है प्रतीत किम भाई, और थोड़ा घुटने भर का जल हो गोडे गोडे दा ते लगेगा जैसे बहुत गहरा है, तो वो उच्चों गंभीरता कित्थों आ गई, वो आकाश दा प्रतिबिंब है तां भुलेखा पै रहा है थोड़ा थोड़ा ही वो है थोड़ा ही जल, इतना भी होगा ना तो लगेगा बहुत जैसे डुब बंदा डुब जाएगा ये तो है थोड़ा थोड़ा ही, वो भुलेखा क्यों पै रहा, आकाश की गंभीरता जल दे विच प्रतीत हो रही है भाई, जल तो थोड़ा थोड़ा ही है, कित नदी के किनारे जाके देखियो पता चलेगा इतने इतने जल भी नीला नीला होएगा, वो इतना बल भी हो कमर तक तो लगेगा जैसे बहुत गहरा है, वो जो गंभीरता है वो जल की नहीं वो आकाश की है, आकाश का प्रतिबिंब वो पै रहा, वो गंभीरता आकाश की जल दे विच प्रतीत हो रही है। ये उन्हें सिद्ध कर दिता कि भी रूप रहित जो आकाश है वह भी प्रतिबिंब हुंदा है। आगे और भी दृष्टांत देगा, कहिंदा रूप रहित शब्द है ना, शब्द आ शब्द आपां बोल रहे हैं इहदा प्रतिबिंब नहीं हुंदा भाई, इहदा भी हुंदा है, प्रतिबिंब किहनूं कहिंदे आ, उहदे वर्गा जिहड़ी आवाज़ होई उहनूं कहांगे ना, जदों आपां किसे आवाज़ मारांगे तां आवाज़ पलट के नहीं आउंदी, ਉਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਬਈ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ, ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ठीक है ना। आगे दसेगा आके, ठीक है, जाते जल में व्योम को लख अबास सुजान रूप रहत जिम शब्द ते है प्रतिध्वनि को भान। वो कह रहा है जाते जल में व्योम को लख अबास सुजान, हे शुद्ध बुद्धि वाले शिष्य, जल में विच जो है व्योम का प्रतिबिंब लख मैंने जान रूप रहत जिम शब्द ते है प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि को भान, जैसे रूप रहत शब्द है और रूप रहत आकाश है उहदे विच प्रतिध्वनि हो रही है ना, तो वह शब्द की शब्द का प्रतिबिंब है। ठीक है, ठीक है, जो जल के विषय आकाश का प्रतिबिंब नहीं होवे तो गोडे परिणाम जल विषय मनुष्य परिणाम गंभीरता की जो प्रतीति होवे सो नहीं होनी चाहिए। गोडे भर का जल है गोडे गोडे तो लगता बहुत गहरा है, नदी के किनारे खलो के देखना कि वो कितों आ गया गहरापन है, तो गोडे गोडे वाला ही है, जो बिच उतरो लगेगा लाए तो थोड़ा थोड़ा ही है भी, अभी एवं डरी जान रहे थे। वो आकाश का प्रतिबिंब है, जाते आकाश का प्रतिबिंब अंगीकार करना अंगीकार करना योग है, और जो कहे रूप रहित पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं होवे है सो भी निजम नहीं है, काहे ते रूप रहत जो शब्द है ताकि प्रतिध्वनि होवे है सो शब्द का प्रतिबिंब है, जानते रूप रहत जो आकाश है ताका भी प्रतिबिंब बने हैं। ठीक है, अब मेघा काश आ गया। मेघा काश का वर्णन करेंगे, जो मेघ ही अवकाश दे पुन तामे आभास, तिन दोनों को कहत हैं बुद्धि जन मेघा काश। की कह रहे, जो मेघ ही अवकाश दे, जितने स्थान दे विच बदल है उन्होंने जेड़ा पानी भरया पिया उहदे विच जेड़ा प्रतिबिंब होगा उन्हूं की कहांगे मेघा काश। कौन कह रहा है? बुद्धि जन, जो बुद्धिमान पुरुष है उन्हूं की कहांगे मेघा काश। मेघ जो बादल, मेघ मैंने बादल, मेघ का और दूसरा अर्थ नहीं समझ लेना, मेघ मैंने मेघ जो बादल तिनकु जो आकाश अवकाश देवे है, सो मेघ के जल और आकाश का प्रतिबिंब है, तिन दोनों को मेघाकाश कहे हैं। कोई शंका करे हैं, जो मेघ तो आकाश विषय है, तिन में जल और आकाश का प्रतिबिंब दिखे नहीं, कैसे जाने जावे? कोई ऐसी शंका करे कि बदल तो ऊपर है, वो जाके तुसी देखिया सी कि आकाश पानी है, आकाश का प्रतिबिंब पै रहा है, ऐसी कोई शंका करे, कहिंदा उहदा समाधान सुन लो। बरसत मेघ अनंत जल उदक सहित इतु हेत। की कह रहे हैं? बरसत मेघ अनंत जल उदक सहित यही हेत, दक नहीं नव आभास बिन इम प्रतिबिंब समेत। की कह रहे हैं? बरसत मेघ अनंत जल, बदल जो है किन्ना पानी बरसाउंदे भाई, बदलना देना जो बरसात होंदी है, उदक सहित यही हेत, इस हेतु से उन्होंने जल सिद्ध है, भी जल है ता ही तो बरसाते हैं, जो जल ना हो तो कितों बरसा देंगे, ठीक है ना। तो जल सिद्ध हो गया भी वो जल है। दक नहीं नव अवभास बिन, इसलिए जो वो बदल वाला दक मैंने जो जल है, उदक और दक दोनों शब्द जल दे वाचक है। दक नहीं नव अवभास बिन, वह जो बदल दे वाला जल है वह नव मैने आकाश के प्रतिबिंब तो बिना नहीं है, इम प्रतिबिंब समेत, किंतु प्रतिबिंब समेत ही है, ठीक है ना। ठीक है, जब भी मेघ विषय जल और आकाश का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि अनुमान करके जाना जावे है, मेघ जो जल की वृष्टि करे हैं जानते ऐसा अनुमान होवे है, जो मेघ विषय जल है, जो मेघ विषय जल ना होवे तो जल की वृष्टि मेघ से नहीं हुई चाहिए, ठीक है ना। मेघ विषय जल है और जल है सो आकाश के प्रतिबिंब सहित है, काहे ते जो जल होवे है सो आकाश के प्रतिबिंब बिना नहीं होवे है, जानते मेघा विषय जो जल है सो भी आकाश के प्रतिबिंब वाला है। इस रीति से मेघ विषय जल और आकाश के प्रतिबिंब का अनुमान होवे है, उदक और दक जे दोनों जल के नाम है। खोल देता ना उसने। अब महाकाश के नूं कहिंदे आ, बाहर भीतर एक रास व्योम व्यापक जो नव रूप, महाकाश तहु कहै है कोविद बुद्धि अनूप। अनोखी बुद्धि वाले, विलक्षण बुद्धि वाले, अद्भुत बुद्धि वाले जो पुरुष हैं वो की कह रहे हैं? महाकाश उन्हूं कह रहे हैं, किसनू? बाहर भीतर एक रस व्यापक जो नव रूप, जड़ा आकाश का रूप है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब एक समान है, विलक्षण बुद्धि वाले जो अद्भुत बुद्धि वाले जो पुरुष है उन्हूं की कहांगे महाकाश। बाहर और भीतर सारे एक रस व्यापक जो नव कहिए आकाश का स्वरूप है, ताकु अनूप कहिए अद्भुत बुद्धि वाले पंडित महाकाश कहे हैं। चार चेतन के वर्णन का उपोदघात देख लो। अब एक ही कर रहे हैं, उपोदघात ही कर रहे हैं अजय। हाँ, अजय लक्ष्य तो जाना ही है, अजय तो चारा का रूप समझा दिता कि आकाश का, अब चारा का चेतन का समझाएंगे, फिर उन्होंने एकता दिखाएंगे किड़ा कर्म करने वाला किड़ा फल देने वाला है। आप मानते हैं ना आप जीव है, असी तो कर्म करेंगे तो फल जोड़ा कौन देने वाला ईश्वर, वो दसेंगे करन वाला कौन है, ना तुसी करन वाले जे ना ईश्वर देने वाला, तो फिर की है भी ये आंदा सर भुलेखे विच चल रहा संसार है ना, तो भुलेखा कदों चक्या जाएगा, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਚੇਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦਿਖਾਏਗੇ, ਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਚੇਤਨ ਦੇ ਸੁਣੋ, ਚਾਰ ਭਾਤੀ ਨਭ ਕੇ ਕਹੇ ਲੱਛਣ ਸੁਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬ ਚੇਤਨ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਣ ਜਾਂ ਸੋ ਲਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਕਰੇ ਚਾਰ ਭਾਂਤ ਨਭ ਕੇ ਕਹੇ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬ ਚੇਤਨ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਣ ਜਾਸੂ ਲਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਾ ਫਲ ਗਿਆਨ। ਹੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ, ਅਬ ਚਾਰ ਭਾਂਤੀ ਕੇ ਚੇਤਨ ਕੇ ਲੱਛਣ ਸੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਾ ਫਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਕੁਟਸਥ ਵਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤੀ ਵਾ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਗਿਆਨ ਮੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਚੇਤਨਯ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਮ ਮਾਨੀਏ, ਸੋ ਕੁਟਸਥ ਅਜਨਮਣੇ ਜਨਮ ਸੇ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ। ਮਤੀ ਵਾ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਗਿਆਨ ਕੋ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਚੇਤਨਯ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਮ ਮਾਨੀਏ, ਸੋ ਕੁਟਸਥ ਅਜਨ। ਅੰਦੇ ਜੈਸੇ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਮਣੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼। ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਔਰ ਸਮਸ਼ਟੀ, ਸਮਸ਼ਟੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਗਿਆਨ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਸ਼ਟੀ। ਔਰ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੀਵ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਅਸ਼ਟੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤੀ ਵਾ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਗਿਆਨ ਮੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤੀ ਮੈਨੇ ਬੁੱਧੀ, ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਧੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਅਗਿਆਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਚੇਤਨ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੇਤਨ। ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਮ ਜਾਣੀਏ, ਸੋ ਕੁਟਸਥ ਅਜਨ, ਉਹੀ ਚੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਸਮਾਨ, ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਟਸਥ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸੇ ਰਹਿਤ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇਗਾ ਵੀ, ਕੌਣ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ, ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਰੇਗਾ ਬਈ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮਿਆ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਆਤਮਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੂੰ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਊਗਾ ਬਈ। ਇਹ ਘੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿਉ, ਜੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀ, ਘੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਘੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੜੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਘੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ, ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਾਕਰਨ ਮੇਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਬਈ। ਅੰਤਾਕਰਨ ਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕੈਸੇ, ਆਂਦੇ ਜੈਸੇ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ छोटे छोटे लोहे के टुकड़े रख के नीचे चुंबक लगाओगे ना तो चुंबक जिधर नू जाएगी और लोहा भी क्रिया करता जाएगा, लोहे च क्रिया नहीं हैगी, ऐसे शरीर में क्रिया नहीं है, भ्रांति से प्रतीत हो रही है। तेज गड्डी चलती हो तो वो बैठो तो की लगेगा, जैसे वृक्ष पिछे नू दौड़ रहे हैं, वृक्ष नहीं दौड़ रहे, गड्डी अगे नू जा रही है भाई, वृक्ष थोड़ी पिछे नू दौड़ रहे हैं, तो लगेगा कि जैसे वृक्ष पिछे नू दौड़ रहे हैं, उल्टी प्रतीति होंदी है ना। चलो ये तो कोई किसी ने नहीं ध्यान दिता होएगा, ये तो सारे ने ध्यान दिता होएगा ना, थोड़े थोड़े बदल होण, चाननी रात होवे तो की लगेगा जैसे चंद्रमा बड़ी तेज़ ना दौड़ रहा, तो चंद्रमा नहीं दौड़ रहा, बदल दौड़ रहे हैं, वो बदल दौड़ रहे भाई, चंद्रमा तो अपनी चाल नहीं चल रहा है। हाँ लगता तो अपनी खड़ी है, दूसरी चल रही है, हाँ तो भ्रांति हो जाती भाई, ये सारिया भ्रांतियां, यही भ्रांति सानू हो गई है, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, यह भ्रांति तो चकन वास्ते आप बैठे, होर की करन वास्ते बैठे सारे मिल करके, इसी विचार चल रही है ना। हाँ देखो मति वा व्यष्टि अज्ञान, मति मैंने बुद्धि, बुद्धि कह लो जां व्यष्टि अज्ञान, प्रत्येक जीव का अपना अपना जो अज्ञान है ना वो ले लो, अधिष्ठान चेतन और कुटस्थ घट आकाशम जानिए सो कुटस्थ अजन, वो जो इन तिना मिला करके मति और मति दे विच प्रतिबिंब, और जेदा प्रतिबिंब है कौन, कुटस्थ, ये तिना लै करके जीव बनेगा, एक नहीं लैके बनेगा, क्यों, जे कुटस्थ नू छड़ दोगे तो प्रतिबिंब किहदा पिया, फिर जेदा प्रतिबिंब पवेगा उन्हों भी तो लेना पवेगा, जे उन्हों छड़ दोगे तो फिर जे सूरज नू छड़ दिता तो प्रतिबिंब के दोनों का किदा बनेगा भी, ठीक है ना। वही 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 जितने स्थान में अंतःकरण है उतने स्थान में जेड़ा आया चेतन उन्हों कहांगे कुटस्थ, जितने स्थान में कड़ा है उतने स्थान में आया जेड़ा आकाश उन्हों कहांगे घटाकाश, यदि घटाकाश दे नाल उपमा कर दी है कि कुटस्थ दी, ठीक है ना। सुनो, बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन है सो कुटस्थ कही है, ठीक है, जहाँ पक्ष में बुद्धि सहित चेतन जीव है ता पक्ष में बुद्धि का अधिष्ठान कुटस्थ कहया, और जहाँ पक्ष में व्यष्टि अज्ञान सहित जीव कहे हैं ता पक्ष में व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान है सो कुटस्थ कहया, कैसे भी ले लो, चाहे व्यष्टि अज्ञान ले लो चाहे बुद्धि कह लो, चाहे बुद्धि दे विच प्रतिबिंब पिया आत्मा दा कुटस्थ दा ऐसे कह लो, चाहे व्यष्टि अज्ञान दे विच प्रतिबिंब पिया कुटस्थ दा आत्मा दा ऐसे कह लो, ठीक है ना। जा स्थान विच जै सिद्धांत है, अब सिद्धांत सुन लो, जीव पने का जो विशेषण है ताके अधिष्ठान का नाम कुटस्थ है कहिए है, कुटस्थ किनू कहिंदे आ, देख लो, जीव पने का जो विशेषण है ताके अधिष्ठान का नाम कुटस्थ कहिए है, विशेषण किनू कहिंदे आ, विवर्तक, ठीक से समझ लेना, हाँ एक बड़े बड़े दी समझ विच नहीं आ रही गल, इस वास्ते मैं इससे ज्यादा जोर लगा रहा, बार बार कह रहा, क्यों, विशिष्ट विशिष्ट किनू कहिंदे आ, विशेषण किनू कहिंदे आ, विशेषण का काम इतना ही है उन्हें अलग करके दिखा देना बस, कुछ नहीं करना, विवर्तक इतना ध्यान रखना, हाँ उन्हें विशेषता प्रगट कर देनी है, ये इहदे विच ये विशेषता है बस, वो चाहे वो सदा रहने वाला हो ना रहने वाला वो गल नहीं लेनी, आप हूँ सारे ने दूसरी चादर ली, किसी ने काली ली हो, काली चादर वाले पुरुष नूं बुलाई तो काली चादर ने की कीता, बाकियां पुरशां दे नालो उन्हूं अलग करके जना दिता, तो क्या हुआ, काली चादर विवर्तक अलग करने वाली, हाँ विवर्तक, उहदा कोई काम नहीं है, पर उन्हें अपना भी ज्ञान कराया, अपने सहित जो ज्ञान करावे विशेष का, विशेषण अपने सहित ज्ञान करावेगा, काली चादर जेदे उत्ते होएगी उहदा भी ज्ञान होएगा, काली चादर का भी, छाते वाला पुरुष आ रहा दस पुरश जानते होने एक दे हथ में छाता हो छाता की हो गया विशेषण क्यों छाते ने की किया विवर्तक दसां दे नाल अलग कर दिता उन्हें बस इतना ध्यान रखना है विवर्तक वो ही कह रहा जीवपणे का जो विशेषण जीवपणे का विशेषण कौन है अंतःकरण वो की कर रहा है वह विवर्तक कर रहा कि ब्रह्म चेतन दे नाल अलग करके दिखा रहा जीव है विशेष की कर रहा अंतःकरण विवर्तक है ना जीवपणे का जो विशेषण है ताके अधिष्ठान का नाम कुटस्थ कहिए है सो कुटस्थ अजन्न है उत्पत्ति से रहित है जाका अभिप्राय जय है ब्रह्म से न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न होवे है तैसे जय उत्पन्न नहीं हुआ किंतु ब्रह्म रूप ही है जैसे घटाकाश महाकाश से न्यारा नहीं होएगा किंतु महाकाश रूप है जैसे घटाकाश है उदा महाकाश के नाल की भेद करोगे भी घड़े दे विच जितना आकाश है उन्हूं कहोगे घटाकाश वो घटाकाश और ये महाकाश ये की भेद होगा कोई भेद नहीं घड़े दे विच जैसी मर्जी वस्तु भर दो आकाश नूं कुछ स्पर्श नहीं हो सकता आकाश दे विच जैसी मर्जी गंदी वस्तु सुटो सुगंधी वस्तु सुटो आकाश नूं लेप नहीं है जे महाकाश नूं लेप नहीं है घटाकाश नूं भी लेप नहीं है ये तो उहदा भी जन्म नहीं है इहदा भी जन्म नहीं है तो फिर की होया घटाकाश महाकाश रूप है यही वो कह रहा ये जिहड़ा कुटस्थ है ये जो आत्मा है ये भी ब्रह्म स्वरूप है ये जिहड़ा घड़ा है इहदे विच जिहड़ा आया चेतन उहनूं की कहांगे कुटस्थ ब्रह्म उहदा और ब्रह्म का जो व्यापक ब्रह्म है कोई भेद नहीं वह भी असंग है शुद्ध ब्रह्म यह भी असंग है इन्हू भी कोई लेप नहीं है जन्म जन्मांतरों तो मना मन घाड़ना घटता आ रहा है तो आत्मा का की बिगड़िया ठीक है ना अब कुटस्थ के दो अर्थ भी करेंगे और भी सुन लेना थोड़ा आएगा अगे जय हो गया ना जय जह जो कुटस्थ है सोई आत्मा पद का लक्ष्य अर्थ है जय और जही को प्रत्यक कहे हैं प्रत्यक मैंने अंतरात्मा और जही को निज रूप कहे हैं और जही जीव साक्षी है कितने नाम रख देते देख लो आत्मा पद का लक्ष्य अर्थ है जही को प्रत्यक कहे हैं जही को निज रूप कहे हैं अपने निज रूप नू निहार ले भाई निहार ला मैंने जान ला समझ ला देख ले और इसी को साक्षी कहे हैं अब जीव वर्णन कर रहे हैं जीव किनू कह रहे हैं काम कर्म जुत बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब जीव कहे विद्वान तही जल नभ तुल सबिंब कर्म काम कर्म जुत बुद्धि में काम मने कामनावा इच्छावा जल घड़े दे विच जल भरिया है ना तो उहदे विच जिहड़ा प्रतिबिंब पिया उहनूं की कहांगे जलाकाश ठीक है तो बुद्धि दे विच की भरिया पिया है घड़े दे विच जल हो गया तो बुद्धि दे विच की भरिया पिया बुद्धि दे विच कर्म और वासनावा वासना मने इच्छावा मेरे को वह चाहिए मेरे को वह चाहिए उहदी इच्छा होगी ये पदार्थ चाहिए मेरे को ये पदार्थ चाहिए ये जिहड़ियां इच्छावां है ये बुद्धि दे विच भरियां पईयां इन्हां दे विच जिहड़ा प्रतिबिंब पवेगा किहदा कुटस्थ दा उहनूं की कहांगे तो जे तुसीं बुद्धि नाल संपर्क तोड़ दो तो जो तुसीं गूढ़ निंद्रा विच सुषुप्ति दे विच सौं जांदे जे उदों की हुंदा तुहाडा बुद्धि दे नाल संपर्क टुट गया ठीक है तो फिर कर्म उपासना कर्म कोई वासना प्रतीत होंदी है साडे विच है कित्थे गई फिर वह क्योंकि जिहदे विच सी पटारी दे विच ओह पटारी लै हो गई किहड़ी बुद्धि बुद्धि रूपी पटारी सी ओह लै हो गई तो आपां की हो गए आनंद स्वरूप तो जदों जागदिया साडी बुद्धि लीन हो जाएगी तो आपां की हो गए ब्रह्म स्वरूप तो करना की है सबसे पहले इच्छावां खत्म करो सबसे पहले इच्छा खत्म करो मेरे को कुछ नहीं जो हुंदा होण दो साडियां इच्छा ना कुछ नहीं होने वाला इस संसार बदलने वाला भी नहीं जे आपां बदलना चाहिए तो जे इनू आपां अपने हिसाब ना चलाउणा चाहिए चलण वाला भी नहीं आ आपां नूं इत्थों मार खा जांदे ना अपने परिवार नूं असीं अपने हिसाब नाल चलाउणा चाह रहे हां, परिवार नूं की आपां अपने पिंड नूं भी अपने हिसाब नाल चलाउणा चाह रहे हां। ये जिहड़ा सारा पिंड है मेरी मन्ने ना तो कदी धोखा ना खावे, ये जिहड़ा भरम सानूं है ना यही सानूं कौने करा रहा, मैं अपना कह रहा, मेरी मन दे कदी इन्हां इदां होणा ही नहीं सी, इन्हां नाल मैं इन्हां नूं कहा सी। ये जिहड़ियां गल्लां है ना सानूं ये नहीं टिकण दे रहीयां, ये हुंदियां कदों हंकार नूं लैके, कदों जदों आपां ब्रह्म दे नालों अपना संबंध तोड़ लैंदे आ, जदों जीवपणे च आ जाएंगे तां ही करांगे ना। नाना काम और कर्म सहित जो बुद्धि है, देखो नाना काम और कर्म सहित जो काम ने वासनावां इच्छावां, ठीक है ना, नाना काम और कर्म सहित जो बुद्धि है तामे जो चेतन का प्रतिबिंब है, ताकु विद्वान कहिए ज्ञानी जीव कहे हैं। सो केवल प्रतिबिंब मात्र को जीव नहीं कहे हैं, किंतु जैसे घटाकाश सहित आकाश के प्रतिबिंब को जलाकाश कहे हैं, तैसे सबिंब कहिए बिंब जो कुटस्थ ता सहित चिदाभास को जीव कहे हैं। किनू क्या जीव फिर? चिदाभास नू, चिदाभास मैंने चेतन का जो आभास है, चेतन नहीं है, चेतन का आभास प्रतीत हो रहा, चेतन नहीं है भाई। शीशे दे विचों लशकोर पई कंध ते उहनू सूरज समझ लेना कोई बुद्धिमानी है? उहनू सूरज समझ के व्यवहार करन लग जो, उहदी पूजा करिए यही सूरज है, ते कोई बुद्धिमान तो नहीं कहेगा ना। यही हाल साडा होया पिया है, साडे जिहड़ी बुद्धि है उहदे विच जिहड़ा प्रतिबिंब पै रहा आपां उही अपना सरूप समझी बैठे हैं, मैं यही हूँ। जिहदा प्रतिबिंब जिहदा पै रहा है उहनू आपां भुल गए, जीव बन गए, होर की होया। जाते जह सिद्धांत हुआ बुद्धि में जो चिदाभास और बुद्धि का अधिष्ठान चेतन दोनों वाका नाम जीव है, ठीक है ना। अधिष्ठान कुटस्थ में वह आभास बहाल रक्त पुष्प ऊपर धर्यो स्फटिक हो जिमे लाल की कह रहे है, अधिष्ठान कुटस्थ में है आभास अभाल, अधिष्ठान जो कुटस्थ है उहदे विच आभास जो है बहाल मने उत्पन्न होगा, कैसे रक्त पुष्प ऊपर धरियो स्फटिक होए जिवें लाल, जैसे कोई रक्त लाल फुल है जा लाल कपड़ा है उहदे ते आपां मणि रख दी स्फटिक, ते उहदी जिहड़ी लाल पणे दी दमक है ना उह सफेद पत्थर विच स्फटिक मणि विच भी प्रतीत होने लग जाएगी लालिमा। तो क्यों प्रतीत होने लग गई? संजोग से। तो जदों उहदा संजोग टुट गया आपां उहनूं उत्थों उठा के इधर कर दिता, वह तो पहले भी सफेद से, जदों इधर किया उदों भी सफेद प्रतीत, उदों भी सफेद है, जदों आपां पुष्प ते जां कपड़े ते रख दिती उदों लाल प्रतीत हो रही है, पर लाल नहीं है वो, लालपना पुष्प का धर्म है स्फटिक का नहीं। ऐसे ही जो अंतःकरण है उहदे नाल संबंध करके आत्मा दा, ते मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसे हो रहा है, आत्मा ना सुखी है ना दुखी है, वो जैसे पहले था ऐसे ही है, ठीक है। पूर्व दोहे विषय बिंब जो कुटस्थ ता सहित अभास को जीव कहया, जानते जह प्रतीत होवे है जो बुद्धि में प्रतिबिंब है सो कुटस्थ का है और बाहर के ब्रह्म चेतन का नहीं, कहे ते जाका प्रतिबिंब होवे सो बिंब कहिए है, सो कुटस्थ को बिंब कहया, जाते ताका प्रतिबिंब है जह प्रतीत होवे है सो जा दोहे में प्रतिपादन करे हैं। की कह रहे है? ये कह रहे जेदा प्रतिबिंब होवेगा उनू तो बिंब कहेंगे, जे सूरज का प्रतिबिंब पै रहा है शीशे दे विचों निकल के तो बिंब किनू कहेंगे? सूरज नू, वो की हो गया प्रतिबिंब, तो बुद्धि दे विच जेड़ा प्रतिबिंब पै रहा किहदा पै रहा? जेदा पै रहा वो की होया? बिंब। वो कौन है? कुटस्थ साक्षी आत्मा, उहदा कहा आप दोहे दे विच नाल समझाएंगे। जैसे बड़े लाल पुष्प के ऊपर जो धरिया सफेद स्फटिक है ताके विषय फूल की लाली की दमक होवे है, सो लाल फूल का प्रतिबिंब है, तैसे कुटस्थ के आश्रित जो बुद्धि ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਕੁਟਸਥ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਦਮਕ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਦਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਣ? ਆਭਾਸ। ਤੈ ਜੈਸੇ ਸਫਟਿਕ ਅਤਿਅੰਤ ਉਜਵਲ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਾ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਟਸਥ ਕੀ ਦਮਕ ਕਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਕੁਟਸਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਅਥਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਕਾ ਘਟ ਕੇ ਜਲ ਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਔਰ ਭੀਤਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਲ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭੀਤਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭਲੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਕਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹ ਜੋ ਕਹੇ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਕਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ ਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਹੇ ਹੈ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਨਿਜਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜਹ ਪੂਰਵ ਕਹੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇ ਹੈ।